प्रवचन सार नामक जो शास्त्र है उसके ऊपर गुरुदेव के जो प्रवचन हुए हैं दिव्य ध्वनि सार, इसका हम पृष्ठ क्रमांक 35 पर आए थे। यहाँ बात वो चल रही थी कि आत्मा को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता है। क्या कहा? कहते हैं कि जब तक इस जीव को अपने आत्मा का अनुभव नहीं होता है, यानी निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तब तक उसे यानी साथ में चारित्र भी होगा लेकिन उसको चारित्र नहीं कहेंगे। किसकी अपेक्षा से? कि जो मुनिराज होते हैं उनको जिस पैमाने में जितने गहराई से चारित्र में यानी अपने स्वरूप में एकाग्रता लीनता होती है, उस अपेक्षा से कहते हैं कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होगा। यानी कोई आत्मानुभवी नहीं है, 28 मूल गुण भी पालन करता है, तब भी उसको चारित्र नहीं कहते। इस बात को विशेष जोर से कहने में आ रहा है, विशेष बलपूर्वक कहने में आ रहा है। क्या कहा? कि आत्मा के सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान बिना चारित्र नहीं होता। ये मूल बात हमने शनिचर के दिन में देखी थी। आज वहाँ अगला पैराग्राफ जो है, लोग देखा देखी बरसी तब करते हैं, उसमें राग की मंदता हो तो पुण्य होता है, किंतु पुण्य से धर्म मानना वह मिथ्यात्व है। मूल बात क्या है कि बर्फी तब मत करो ऐसा नहीं कह रहे हैं। देखो लोगों को तो ऐसा ही उल्टा ही उंधा ही कुछ उसका अर्थ निकालते हैं। यहाँ यह बता रहे हैं कि बर्फी तब जो है उससे अगर आपके मंद परिणाम हो तो पुण्य बंधेगा, यानी बर्फी तब करने के बाद मुझे कुछ बहुत लौकिक फायदा होगा इस आशा से, लोभ से अगर कोई करता हो कि मुझे यश मिलेगा, मेरा नाम चार जगह हो जाएगा, समाज में मेरे को सब लोग पहचानेंगे, इस तरह से कोई लौकिक अपेक्षा से वांछा से अगर कोई जो ऐसा पुण्य के परिणाम करता है तो वास्तव में तो उसे पुण्य बंध भी नहीं होता। अगर कषाय बंध हो तो पुण्य बंध होगा, लेकिन इस पुण्य बंध से धर्म होता है ऐसा मानता है कोई जी तो वह तो मिथ्या का महापाप है। ये बात समझा रहे, लेकिन इसका अर्थ लोग क्या लेते हैं, देखो देखो इधर तो शुभ परिणाम को ये कहते हैं, शुभ परिणाम को यहाँ निषेध करते हैं, शुभ परिणाम का निषेध नहीं कर रहे, शुभ परिणाम से धर्म होना ये जो मान्यता है उसका निषेध। क्या कहते हैं, देखो लोग देखा देखी बरसी तब करते हैं, उसमें राग की मंदता हो तो पुण्य बंध होता है, किंतु पुण्य से धर्म मानना वह तो मिथ्यात्व है। आहार पानी नहीं लेना अकाम निर्जरा का कारण नहीं है, किंतु राग की मंदता हो तो पुण्य बंध होता है। वहाँ मंद कषाय हो तो अकाम निर्जरा है, किंतु धर्म तो है ही नहीं। उसमें भी लोभ की आसक्ति की तीव्रता न हो तो ही पुण्य होता है। एक सेकंड के असंख्यातवे भाग में पूर्ण ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसी प्रतीति ऐसा ज्ञान और ऐसी लीनता ही धर्म है। कितना एक अंतर्मूर्त, एक अंतर्मूर्त कितना है, देखो क्या कह रहे हैं, देखो जरा समझने की कोशिश करना। एक सेकंड के असंख्यातवे भाग में पूर्ण, मतलब उसका ड्यूरेशन कितना है, एक सेकंड के असंख्यातवे भाग मात्र, ऐसा क्यों कहते हैं, देखो देखो ये सबसे छोटा अंतर्मूर्त किसको कहा जाता है, कि एक आवली जो होती है उसमें असंख्यात समय होते हैं, वो कितने असंख्यात समय होते हैं, तो जघन्य युक्ता संख्यात, वो जघन्य युक्ता संख्यात जितने समय वो एक आवली में होते हैं, और एक आवली प्लस एक समय, ये सबसे छोटा अंतर्मूर्त। अब ऐसे एक सेकंड में सैकड़ों आवली होती है, इसलिए कह रहे देखो कि एक सेकंड के हम तो क्या समझते हैं, आत्मा 10 मिनट तक मैं आत्मानुभव में रहा, जा तेरी ऐसी दशा नहीं रहेगी, तू तो मुनि बन जाएगा, 10 मिनट तू लगातार आत्मा का अनुभव करेगा, तो वो मुनियों को भी उतना नहीं होता। अरे जो ऊपर के गुणस्थान है वो तो सेकंड के भी कितने छोटे छोटे भाग गए हैं, लेकिन मालूम नहीं है ना क्या। तो यहाँ क्या कह रहे, देखो ये हम समझते हैं ना, अरविंद भाई कांजी स्वामी को भी कर्णानियों का बहुत बड़ा अभ्यास था, नहीं तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं करते। देखो जब हम कर्णानियों का अभ्यास नहीं करते थे हमको पता नहीं लगता था, ये ऐसे हम पढ़ के जाते थे आगे। तो यहाँ क्या कहा, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्या बोल रहे हैं, जब अभ्यास नहीं हो गए क्या बोल रहे हैं। बात तो असल में यही है कि एक सेकंड के असंख्यातवे भाग में, यानी इतने समय तक मैं पूर्ण ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसी प्रतीति ज्ञान और लीनता, तो इसी को धर्म कहा है। और इतने टाइम में तुमको समय दर्शन हो गया, फिर हवा में उड़ते उड़ते ऊपर जाएगा हल्का होते होते कितने सेकंड निकल जाएंगे। अभी तो यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है, यहाँ यानी अभी वर्तमान में दुनिया तो बाहर में धर्म मानती है, यानी बाहर की जो कोई क्रिया हो उसी को धर्म माना जाता है। कुंदकुंदाचार्य कहते हैं कि मैं अनादि अनंत ध्रुव स्वभावी हूँ, मेरे में अतीन्द्रिय आनंद भरा है, उसकी अंतर्मुखता हुई, दृष्टि सम्यक हुई, उसके साथ सम्यक ज्ञान हुआ, पश्चात अंतर में लीनता का होना वह चारित्र है। सत्य असत्य के दो पड़खों के भेद को जाने बिना अथवा भेद ज्ञान बिना अज्ञानी खिचड़ी यानी मिलावट करता है, यानी जो सब बातों को एक साथ मिला देता है। किसको? सत्य को, असत्य को, स्व पर को, ये एक दूसरे के साथ मिला देता है। देह की क्रिया भिन्न है, पुण्य भिन्न है और ज्ञानानंद स्वभाव भिन्न है। ये तीन बातें बताई। क्या कहा? ये देह जो है और देह से जो क्रिया है वह भिन्न है, और ये जो पुण्य के परिणाम जो हो रहे हैं वे भी भिन्न है। किससे? कि ऐसा जो ज्ञानानंद स्वभाव है उससे, और वह भी एक भिन्न वस्तु है। देखो वास्तव में तो ये राग के परिणाम जो है यानी पुण्य के परिणाम है, ये आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन आत्मा में उत्पन्न होते हुए भी वह आत्मा का त्रिकाली स्वभाव जो है उसमें वो नहीं है, वह उसका विभाव भाव है, इसलिए उसको भी जुदा कर दिया। क्या कहा? देखो देह की क्रिया भिन्न है, ये तो हम समझ सकते हैं। देह तो जड़ है, पुद्गल है, अचेतन है, उसमें और जीव द्रव्य में यानी आत्मा में यानी मुझ में अत्यंत अभाव है, उसको तो हम ज्ञान से तो जरूर मान लेते हैं। कहा देह जुदा और मैं जुदा, बिल्कुल वो तो अच्छी बात है, लेकिन राग से जुदा थोड़ा सा कांपता ही है जी, राग भी नहीं करना। अरे राग तो कर नहीं सकता है, तेरा स्वभाव राग करने जैसा नहीं, ये तो समझ पहले, फिर अपने आप वो होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, घबरा मत। क्या कहा? पुण्य भिन्न है और ज्ञानानंद स्वभाव जो त्रिकाली स्वभाव है वह भिन्न है, ऐसे भेद ज्ञान बिना सच्ची प्ररूपणा नहीं हो सकती, यानी यह आत्मा का निरूपण, आत्मा का कथन, प्ररूपणा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन कथन नहीं हो सकता। ऐसा क्या
प्रश्न है अभी? देखो यहाँ तीन बातें बताई ना, देह की क्रिया, पुण्य ने राग की क्रिया, और तीसरी क्या बात है? ज्ञान आनंद स्वभाव। तो ज्ञान की क्रिया को क्यों नहीं लिया? ज्ञान की क्रिया को इसमें लेना क्यों नहीं लेना?
लताबेन बोलो,
ज्ञान जानता है और कोई? हाँ देखो ये भेद ज्ञान बिना, भेद ज्ञान में ज्ञान की क्रिया आ गई। क्या लाया मैंने, क्या कहना चाहिए? देखो देह की क्रिया में उसकी पर्याय आई जड़ की, पुण्य भिन्न है यानी उसमें राग भाव आया, और ज्ञानानंद स्वभाव भिन्न है ऐसा जाना किसने? ज्ञान की पर्याय ने, उसी को हमने भेद ज्ञान कहा, तो वहाँ वो ज्ञान की क्रिया भी आ गई।
पृष्ठ 36। सम्यक दर्शन बिना कभी भी चारित्र नहीं होता, इसलिए अज्ञानी को चारित्र नहीं होता। क्या कहा? देखो यानी जिसे सम्यक दर्शन नहीं है उसके चाहे जितने शुभ परिणाम हो, ये बरसी तब से छोड़ो, 205 का 200 कितना उपवास करो, जो भी होता होगा जिसको, वह भी धर्म की क्रिया नहीं है कहते हैं, वो चारित्र नहीं है। इसलिए अज्ञानी को चारित्र नहीं होता, अज्ञानी के व्रत तप सभी बाल व्रत और बाल तप है। बाल व्रत यानी अभी आप क्या बोलते हैं मैं समझ नहीं,
या अपन जब भी खेलते हैं ना, बड़े लोग कुछ खेल खेलते हैं ना, तो उसमें छोटे छोटे बच्चे आते खेलने का, तो उसको हम कुछ बोलते हैं ना क्या है? वो तो मराठी में हो गया कच्चा लींबू, यानी वो कंसीडर नहीं करने का, वो कुछ भी करे चले, ऐसे ये कच्चा लींबू है, बाल तरफ बाल पर देखो क्या कहते, अज्ञानी के व्रत तप सभी बाल व्रत, यानी वो जैसा बच्चा कुछ भी क्रिया करता है बिना जाने बिना समझे,
बड़े लोग करेंगे तो भी,
हाँ बड़े लोग करेंगे तब भी वो बाल व्रत है। ख्याल में आए, जंगल में रुदन यानी रोने के समान है। अभी यहाँ क्या हो गया, रुदन हुआ है, वो नल का न चाहिए, और रोन के वो रोने के चाहिए, नहीं अंदर में जो न है उसके ऊपर एक मात्रा देना है। क्या हुआ देखो, जंगल में वो कहते हैं ना रणमा पोक मुके एवी बात के, तो रणमा पोक यानी जहाँ ये होता है, क्या रण यानी समझे, डेजर्ट डेजर्ट, उसमें चाहे जितना चिल्लाओ कोई सुनने वाले है नहीं है, जब मुंह खुलेगा तो अंदर वो रेती जाएगा, तो रणमा पोक मुकवा जो है कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया कि अरण्य में रुदन यानी जंगल में रुदन यानी जंगल में रोने जैसे हैं, वहां तो कोई सुनने वाला है नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, आएगा तो शेर आएगा और खा जाएगा, दूसरा कुछ नहीं। तो यहाँ पर भी ये जीव आएगा और उसको कोई अजगर वजगर खा जाएगा, जो भी होगा वो जाएगा, तो ये अन्य गति में नरक निगोद में कहीं। तो क्या कहा, अज्ञानी के व्रत तप सभी बाल व्रत है, बाल तप है, जंगल में रुदन यानी रोने के समान है, आत्मा अनादि ध्रुव है, जड़ से पृथक है, जड़ की क्रिया आत्मा से नहीं होती। ये जड़ की क्रिया आत्मा से नहीं होती, इसके लिए अपने पास कोई सबूत है प्रतिमत है, जीव या आत्मा जड़ की क्रिया नहीं करता है, इसके लिए अपने पास कोई प्रूफ प्रूफ है? मालूम है आपको, कोई बात नहीं, अभी सुन ना, बहुत हाथ ऊपर है, अब हमारी जयाबेन बोलेगी। हाँ वो, हाँ वो जीव करता नहीं है, क्यों नहीं करता है? अत्यंत अभाव क्या है भाई, किसमें किसमें, कौन से पुद्गल, तो ये शरीर क्या है, पुद्गल है, देह है ना, तो ये पुद्गल है, तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव होता है। दूसरी भाषा में कहो तो जीव द्रव्य का अपना अपना स्वचतुष्ट जुदा है, और शरीर यानी पुद्गल जो है, तो पुद्गल में तो अनंत परमाणु है, तो प्रत्येक परमाणु का स्वचतुष्ट जुदा जुदा है। ये चार अभाव की बात समझेंगे तो ऐसी बात है कि ये यहाँ का परमाणु उसके बाजू के परमाणु का कार्य नहीं करेगा, ऐसी है बात, नहीं भरोसा नहीं। अभी आपको इधर थोड़ा हो गया तो इधर दुखता है कि नहीं, इधर 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 किधर, तो उसके बाजू का जो है ना वो इधर पीला पीला हो गया, और बाजू का तो ऐसे क्या ऐसा रह गया, ऐसा क्यों? प्रत्येक परमाणु का परिणाम किधर, एक परमाणु सजातीय दूसरे परमाणु का कार्य नहीं करे, और ये विजातीय उद्गल का कार्य जीव करे, ये बात कैसे नक्की हो सकती है? तो इन दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव है। क्या कहा देखो, यहाँ कहते हैं आत्मा अनादि ध्रुव है, जड़ से पृथक है, जड़ से पृथकता है ना, जड़ की क्रिया आत्मा से नहीं होती, पुण्य पाप विकार है, जो शांति के लिए बेकार है। छठवें गुणस्थान में शुभराग आ जाता है, उसे आत्मस्थिरता द्वारा छोड़ते हैं, यानी वह जो शुभराग आता है तो शुभराग को, अरे इसको हटाना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ऐसा करके उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो क्या करते हैं, उसको गौण करके अपने स्वरूप को ही जानते रहते हैं, यानी उसी में एकाग्र हो जाते हैं, तो राग अपने आप खत्म हो जाता है। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि मेरा आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, उसका आश्रय करके मैं चारित्र को प्राप्त करता हूँ, किंतु वर्तमान में राग का कण यानी राग भाव उत्पन्न होता है। 28 मूल गुण पालन का भाव यह शुभ राग है, मुनि को नग्न है, वह नग्न करना जो आधा और न पूरा, मुनि को नग्न दिगंबर दशा होती है, किंतु वस्त्र पात्र सहित मुनिपना क्या लिखा हा? कभी भी है, नहीं होता नहीं है। देखो जरा सीधा पढ़ना भाई, मैं तो मेरा चश्मा दूं, मैं तो बिना चश्मा का पढ़ता हूँ। देखो क्या लिखा है, मुनि को नग्न दिगंबर दशा होती है, जो मुनि है उनकी बात चल रही है, अन्य की नहीं, किंतु वस्त्र पात्र सहित मुनिपना कभी भी नहीं होता, कभी भी दिख दिया, यानी वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। अरे गुरुदेव तो ऐसा कहते हैं कि वस्त्र का एक धागा भी रखे तो उसका मुनिपना नहीं रहेगा, एक एक धागा, वो तो पूरा धागा वस्त्र क्या। मेरा स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसी दृष्टि तथा ज्ञान तो उन्हें हुआ है, किंतु लीनता थोड़ी हुई है और थोड़ा कषायांश बाकी है। कषायांश हुआ है तो श करना, दो जगह है और एक जगह है, क्या कहा, मेरा स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप ऐसी दृष्टि तथा ज्ञान तो उन्हें हुआ है, किंतु लीनता थोड़ी हुई है और थोड़ा कषायांश बाकी है। अहिंसा सत्य आचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह की वृत्ति पुण्यबंध का कारण है, किंतु वह मोक्ष का कारण नहीं है। यानी अहिंसा पालने का परिणाम, व्रत सत्य बोलने के परिणाम, आचौर्य का परिणाम, ऐसे सारे जो है ये कहते हैं, ये इनमें जो वृत्तियां उठती है यानी विकल्प उठते हैं वे पुण्यबंध का कारण है, किंतु वह मोक्ष का कारण नहीं है, यानी वो धर्म नहीं। पहली बात तो ऐसा सारा चारित्र क्रम में आ गया है, मेरी भूमिका में क्रमबद्ध 28 मूल गुण पालन का राग आ गया है, गुणस्थान आरोहण के क्रम में जबरदस्ती से अर्थात चारित्र मोह के मंद उदय से आ गया है, किन कौन ये राग 28 मूल गुण पालन करने का राग, तो वो तो चारित्र मोह के मंद उदय से आ गया है, किंतु वह धर्म नहीं है, अपितु धर्म की अधूरी भूमिका में ऐसा निमित्त होता है, यह बतलाया। यानी ऐसे अधूरी दशा में जब तक यह जीव श्रेणी मानकर 8वें 9वें 10वें 12वें तक नहीं पहुंचता है तब तक ऐसे बीच में राग आ पड़ता है, करना नहीं पड़ता तो बीच में आ जाता है और वह निमित्त रूप से होता है, यह बताने के लिए, क्योंकि ज्ञान प्रदान ग्रंथ है ना, तो क्या क्या होता है, उपादान क्या है, निमित्त क्या है, सब बातें यहाँ बताएं, क्योंकि ज्ञान क्या नहीं जाने, सबको जाने, और वहाँ समय सार में केवल दृष्टि का विषय, उसमें अन्य बातों को गौण करके त्रिकाली स्वभाव की ही बात की है। क्या कहा, वह धर्म नहीं अपितु धर्म की अधूरी भूमिका में ऐसा निमित्त होता है, वह बताया है। फिर भी महाव्रत स्वयं धर्म नहीं है,
देखो बात तो यहाँ ऐसे समझा रहे हैं हमें कि हम रोज कम से कम यहाँ आने वाले दो बार और घर में बैठने वाले एक बार नमोकार मंत्र नौ बार बोलते हैं। तो हम साधुओं को कितने बार नमस्कार करते हैं? नौत्रिक 27 बार हो गया घर में। तो यहाँ जो कह रहे हैं हम साधुओं को जो नमस्कार करते हैं तो क्यों नमस्कार करते हैं? तो उनमें जो वीतरागता है, उनमें जो निश्चय चारित्र वर्तता है, उस चारित्र रूप अवस्था को हम नमस्कार करते हैं। क्योंकि हमें क्या प्राप्त करना है? हमें तो मुक्ति प्राप्त करनी है। और मुक्ति कब प्राप्त होगी? कि जब ये कर्म नष्ट हो जाएंगे। कर्म कब नष्ट होंगे? कि जब हम कर्म नहीं बांधेंगे। कर्म कब नहीं बंधेगा? जब हम शुद्धोपयोग में रहेंगे। ख्याल में आए? तो शुद्धोपयोग में रहते हुए कर्म नहीं बनते हैं, और जब जब हम शुभोपयोग में या अशुभोपयोग में होंगे तो कर्म बंधेंगे। तो यहाँ यह कहते हैं कि वे भी जो मुनिराज है उनको भी हम वंदन करते हैं, तो उनमें जो राग परिणाम है उस राग परिणाम को हम वंदन नहीं कर रहे हैं। उनमें जो 28 मूल गुण पालन करने के जो परिणाम है उसे हमारा वंदन नहीं है, लेकिन उनमें जो वीतरागता वर्तती है, क्योंकि वीतराग बनना है तो वीतराग बनने का मार्ग भी वीतरागी होगा, वो सरागी नहीं हो सकता। अरे ऐसे मुनियों के वीतराग दशा को हम नमस्कार करते हैं, और जो भगवान को ही सरागी बनाकर उनको पूजते हैं उनको तो क्या कहने। उनके राग के परिणाम, राग के परिणाम आते हैं और वहाँ उस समय की योग्यता उपादान लेना।
ये बाह्य सहचर तरीके से निमित्त कहा है, धर्म की भूमिका में ऐसा निमित्त होता है।
निमित्त यानी वहाँ जो अभी वो छठे गुण स्थान में है तो उनको ऐसा राग आ जाता है, तो राग का मूल उपादान क्या? राग हुआ ये कार्य हुआ, यानी वह उपाधि है और उसका उपादान होगा तत्समय की योग्यता वाला, और उसका त्रिकाली उपादान लेंगे तो आत्मा लेना या चारित्र गुण। विवाह परिणमन जो हुआ उसको उपाधि कहेंगे ना?
नहीं नहीं नहीं, यहाँ राग को निमित्त कहा है।
हाँ
राग को निमित्त कहा, और जो वितराग भाव हुआ वो नैमित्तिक, उसको उपादेय उपादान में घटाना।
नहीं नहीं, उनको ये नहीं पूछना है। वो कह रहे हैं किंतु वह धर्म नहीं है अपितु धर्म के अधूरा अधूरी दशा में यानी भूमिका में ऐसा निमित्त होता है। यानी आपको ऐसा कहना है कि ये राग परंपरा मोक्ष का कारण है, ऐसा बताना चाहते हैं?
हाँ। निमित्त किसको कहा थे? नहीं, आप क्या कहते हैं मुझे नहीं ख्याल है।
मैं ऐसा कह रहा हूँ कि यह जो राग होता है वो राग बीच में आ जाता है, बस राग करते नहीं है वो
ठीक है ना। राग ऐसा राग आता है
तो वो तो,
और ऐसा सहज उमेल है कि जब जब इतनी स्थिरता है तो इसी प्रकार का राग आएगा, संसार का अन्य राग नहीं आएगा।
वो बात बराबर है,
उसी को निमित्त कहा गया। जितनी अंतरंग स्थिरता है उसके पर्याय में इतना राग भाव है, इसका ज्ञान कराया है।
उनका जो प्रश्न है ये जो निमित्त अगर आप कहते हैं तो उसका उपादान कौन होगा?
जब आपका प्रश्न क्या है फिर?
निमित्त का नैमित्तिक पूछ सकते हैं, उपादान नहीं पूछ सकते।
यानी कार्य क्या हुआ? तो धर्म की अधूरी भूमिका चल रही है ना, तो धर्म की अधूरी यानी पार्शल वितरकता हुई, वो उपादेय वो कार्य हुआ जीव में, और तब निमित्त रूप से उतना 28 मूल गुण पालन करने का राग है उसी समय है ना, वो निमित्त हमेशा उसी समय में होता है, तो उसको निमित्त में लेना है, ऐसा मेरे को ख्याल है।
अरविंद भाई आप क्या कहते हैं? सोच के बताएंगे, अभी कंट्रोवर्सी हो रही है हमारे दोनों में। यहाँ तो देखो मेरी भूमिका में क्रमबद्ध 28 मूलगुण पालन का राग आ गया है, गुणस्थान आरोहण में क्रम में जबरदस्ती से अर्थात चारित्रों के मंदोदय से आ गया है, किंतु वह धर्म नहीं है, अभी तो धर्म के अधूरी भूमिका में निमित्त तो होता है वह बताया है।
जैसे चौथे वाले को कैसा होगा, देव गुरु शास्त्र की भक्ति है, नौ तत्वों की प्रतीति है, सात तत्वों की, वैसे हम उन्हीं की भूमिका में जो महाव्रत है सहचर करके उसको निमित्त का
उपादान कारण कौन है ये नहीं बता सकते ना,
उपादान जीव, उपादान जीव उपादेय जीव की वितरकता जो पार्शल है,
जो है वो जीव के जो
धर्म अधूरी धर्म की दशा लिखा है, धर्म की अधूरी दशा दशा ही पर्याय हुई कार्य हुआ वही तो उपादेय है, और उसी समय जो चरित्र में जो राग है बाकी एक ही गुण में दो बातें थी शराबता विचराबता।
देखो अभी अभी ख्याल में आ गया, देखो इस तरह ले सकते हैं और अभी है, देखो बात क्या हुई तो मुख्य कार्य क्या हुआ है, यहाँ कार्य तो पार्शल वितरकता हुई, पार्शल वितरकता हुई यह तो कार्य हो यानी उपादान के अतिरिक्त उसको उपादेय कहेंगे, तो उपादेय क्या है तो पार्शल वितरकता, और उसका उपादान क्या है तो वहाँ लेना जो वही चारित्र गुण। अब यहाँ निमित्त जो है वह रात की दशा भी है यानी 28 मूलगुण पालन करने के बाद के करना, और कार्य क्या हुआ नैमित्त कौन है तो वितरक है, वितराग दशा जो है अधूरी वितराग दशा जो है उपाधेय भी और नैमित्तिक भी है, और निमित्त जो बाहर का ही होगा दूसरा उनका यह जो शुभ परिणाम है वो फिर ऐसा होते हुए भी वह जो महाव्रत है यानी ये जो निमित्त है वह धर्म नहीं है।
महाव्रत के परिणाम है वो पुण्य बंध के कारण है, फिर भी उसको धर्म का सहचर करके उसको निमित्तक कह दिया, क्योंकि निमित्तक को तो कहने की बात है ना, वो करता तो कुछ नहीं है, उसके कारण महाव्रत पाले इसलिए उस जीव को वितरकता उत्पन्न हुई ऐसा नहीं है, परंतु जब जब इतनी वितरकता है तब तक उसकी भूमिका में महाव्रत ही पड़ेगी।
अब आगे बढ़ते हैं, स्वभाव के भान सहित राग की उत्पत्ति नहीं हुई और अंतर स्थिरता हुई है वही अहिंसा है और वही ध्यान है। अहिंसा और ध्यान एक साथ ही है, क्या कहते हैं कि स्वभाव के भान सहित यानी स्वभाव का ज्ञान हुआ और उसे वह एकाग्रता हुई रमणता हुई स्थिरता हुई तब क्या हुआ
रात की उत्पत्ति नहीं हुई और क्या हुआ, अंतर स्थिरता हुई और यह अंतर स्थिरता को ही अहिंसा कहने में आएगा या उसी को ध्यान कहने में आएगा। कैसा है कार्यक्रम?
हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह का पाप परिणाम तीव्र कषाय क्लेश है। ये शह जो है वो शाह का शह चाहिए, षटकार का शह नहीं चाहिए। क्या कहते हैं, ये तीव्र कषाय रूप क्लेश है और अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और निष्परिग्रह का पुण्य परिणाम मंद कषाय रूप क्लेश है। ये भी शह बना देना।
एक पुण्य को भी क्लेश कहा।
गुरुदेव तो कितनी बार ऐसा बोलते थे कि ये देव गति में पुण्य रूप क्लेश भोगने को जाना पड़ता है। यहाँ क्या कहते हैं, वो तीव्र कषाय रूप क्लेश है, कौन से पाप परिणाम, और यह मंद कषाय रूप क्लेश ही है क्योंकि कषाय है ना, आकुलता है। इस तरह दोनों ही कषाय क्लेश रूपी कलंक है। यहाँ पर भी शो बना देना। दुनिया जिसे धर्म मानती है ऐसा पांच महाव्रत का परिणाम भी कलंक है, और जो के बाद जो फुल स्टॉप है वो निकाल देना, और जो आत्म स्वभाव के भान पूर्वक स्थिरता होने पर राग की उत्पत्ति नहीं हुई वही वास्तव में अहिंसा है। ये देखो अमृतचंद्राचार्य ने लिखा था, आत्मा में रागादि की उत्पत्ति नहीं होना वही अहिंसा है, और आत्मा में रागादि की उत्पत्ति होना वह अहिंसा है। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो पांच महाव्रत रूपी जो मंद कषाय रूप जो परिणाम है वे भी कलंक है, और जो आत्म स्वभाव के भान पूर्वक स्थिरता होने पर राग की उत्पत्ति नहीं हुई वह वास्तव में अहिंसा है, वही वास्तव में धर्म है। उसमें पर को नहीं मारना, ऐसे राग की भी उत्पत्ति नहीं हुई, स्वभाव में रहना वही वास्तव में अहिंसा है। ऊपर तो बात कह रहे ना अहिंसा और ध्यान, चारित्र यही अहिंसा और ध्यान का है ना। पर की दया पालना वह व्यवहार से दया है, परंतु निश्चय से तो वह हिंसा ही है। गाय का बाड़ा जलता हो तो उन्हें बचाने का भाव, अथवा क्षुधा तृषावंत प्राणियों को भोजन पानी देने का भाव, वह पुण्य है, पाप नहीं है। कोई मतवाला, मतवाला यानी क्या, हटाग्रही, कोई विशिष्ट मत का ही अनुयायी होगा तो कोई मतवाला जीव उसे पाप कहता है। क्या कहा, ये कल ही बात हमने बताई थी आपको शायद, कि कोई ऐसा मानते हैं कि पाप परिणाम कुछ प्रकार के जो होते हैं वो बंध के कारण है, और कुछ पाप ऐसे जो निर्जरा के कारण है। तो कोई मत वाला क्या बताए, क्या कहते हैं, कोई मत वाला जीव उसे पाप कहता है। किसे, के गाय का जो मतलब गाय को जहाँ रखते हैं ना सब बाड़ा, वो जलता हुआ होगा तो उनको बचाने का भाव, अथवा कोई प्राणी हो भूखा हो और उसको चारा आदि खिलावे, घास खिलावे, तो वो कहते हैं उससे भाव पुण्य है, पाप नहीं है। ऐसे परिणाम जो है वो पुण्य परिणाम है, लेकिन कोई मत वाला जीव उससे पाप कहता है। पुण्य को पाप माने वह मिथ्या दृष्टि है। अभी हम तो वो भी हमने देख लिया कि पुण्य को बंध का भी कारण कहते हैं और मोक्ष का भी कारण कहते हैं, वो भी तो ऐसी ही है। यहाँ तो अलग बात है, यहाँ तो कहते हैं कि पाप को, पुण्य को पाप कहने वाला, यानी अल्टीमेटली क्या है कि सातों द्रव्यों का या नौ पदार्थों का ज्यों का त्यों श्रद्धा नहीं है तो कौन रहेगा वो मिथ्या दृष्टि। तो यहाँ क्या कहा देखो, इस बात से तो आप बहुत वाकिफ होंगे ना कि ऐसे परिणामों को पाप कहना, पुण्य को पाप माने वह मिथ्या दृष्टि है, इसी तरह जो पुण्य को धर्म माने वह भी खोटा है। दोनों तरफ से बता दिया, पुण्य को धर्म मानने वाले का भी निषेध किया और पुण्य को पाप कहने वाले का भी निषेध कर दिया। दान करने पर राग घटे तो वह पुण्य है, पण्य हो गया, वो पुण्य करो, वो पण्य का पुण्य करने का पुण्य तो लो। क्या कहा, दान करने पर राग अगर घटता है तो वह पुण्य है, लेकिन मैंने देखो इतना दान दिया, इतना दान दिया, अगर छाती फूला फुला कर भूलता होगा तो पुण्य परिणाम भी नहीं। दया धर्म का मूल है, अर्थात स्वसन्मुखता के प्रमाण में राग की उत्पत्ति नहीं हुई, वही दया धर्म का मूल है। देखो मूल क्या, मत बेनखान नहीं आती बस, मूल स्लोगन क्या है, दया धर्म का मूल है। तो हमने क्या किया, दुनिया के ऊपर दया दिखाने गए, कबूतर को दाना देवे, तरसिया को पानी पिलावे, भूखिया को खाना खिलावे, ये सब क्या है, पर दया है। लेकिन वह पर की दया पालते पालते क्या लीला गए, वह दया भूल गया ये जी, तो वो तो महाहिंसा है, क्योंकि वो तो समय समय हो रही है। क्या कहा देखो, दया धर्म का मूल है, तो फिर वो दया धर्म का मूल है ऐसा तो कहते हैं, फिर वो कैसा, तो कहते हैं स्वसन्मुखता के प्रमाण में, यानी जब यह जीव अन्य पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप में ले जाता है, अपने सन्मुख कर देता है, यानी अपने में एकाग्र हो जाता है, तो राग की उत्पत्ति नहीं हुई और वही दया यानी धर्म का मूल है। तो देखो क्या होता है कि जब हम स्वयं की दया बल से पालते हैं तो अन्य की दया सहज रूप से पल जाती है, क्योंकि हमें दूसरे को मारने का करने का भाव ही नहीं रहता, क्योंकि अपन अपने में मजबूत है, तो बाकी के जीव ऐसे ही बच जाते हैं और हमें अंतरंग में लीनता नहीं, तो हम यहाँ से वहां जाए, वहां से वहां जाए, तो चलते चलते न मालूम कितने जीव मरते होंगे। पर की दया का विकल्प वह शुभ राग पुण्य है, वह व्यवहार दया है, किंतु वह वास्तविक दया नहीं है। वह और वास्तविक में अंतर चाहिए, बीच में क्या है, क्या कहा, शुभ राग जो है वह व्यवहार दया है परंतु वह वास्तविक दया नहीं है। अहिंसा स्वभाव के साथ दया का विकल्प निमित्त देखकर उसे व्यवहार से दया कहा है, किंतु वह वास्तव में दया नहीं है। वह और वास्तव में फिर जगह छोड़ो, महाव्रतादि के कषाय क्लेश से भिन्न, क्या कहा, प्रतिव्रतय महाव्रतादि को क्या कहा, कषाय क्लेश, कैसे कैसा है, क्लेश रूप है, महाव्रतादि के कषाय क्लेश से भिन्न समता स्वरूप वीतराग चारित्र है और वही मुक्ति का कारण है। यहाँ आचार्य कहते हैं कि जो व्रत परिणाम आते हैं उन्हें मैं कलंक समझता हूँ, क्योंकि कषाय भाव तो बंध का ही कारण है, निष्कलंक निर्मलानंद का कारण तो वीतराग भाव ही होता है, भाव ही है, स्वभाव सन्मुख लीनता का होना ही मुक्ति का कारण है। साधक दशा में जो भी राग आता है वह मुक्ति का कारण नहीं किंतु पुण्यबंध का कारण है। मुनि पर्याय में महाव्रत, देखो देखो यहाँ क्या लिखा है, जरा समझना, साधक दशा में जो राग आता है वह मुक्ति का कारण नहीं है, तो कोई साधक होगा और बीच में
अपने पत्नी पर राग करेगा, वो राग बनने बनने का कारण नहीं करेगा, ऐसा नहीं चलेगा। वो तो बिल्कुल वो तो पाप राग है। काल में आया तो क्या कहा, साधक दशा में जो भी राग आता है वह तो ये तो मुक्ति का कारण नहीं है, तो वो तो कैसा होगा, और कहीं खच्चर जगह में भेज देगा वो ऐसा राग। किंतु पुण्यबंध का कारण है, यहाँ लिखा ना पुण्यबंध का कारण है राग। तो हम अपने क्षेत्र मकान और क्या क्या है वस्त्र बर्तन इसमें हम राग करेंगे, बोलते वो तो पाप करना, वह पुण्यबंध का कारण नहीं है और वह तो पाप करना। मुनि पर्याय में महाव्रत का विकल्प अदंत धोवन खड़े खड़े आहार लेना, ऐसा जो विकल्प आता है वह राग भी कलंक है। मेरा वितराग चारित्र उससे भिन्न है, ऐसा वितराग चारित्र ही निर्वाण की प्राप्ति का कारण है। क्या कहा, वितराग चारित्र है वह निर्वाण का कारण है, किंतु बीच में जो राग आता है वह समता नहीं है, वितराग दशा ही मोक्ष का कारण है और वही साम्य भाव है। महाव्रत पुण्यबंध का कारण कहा है और वितराग चारित्र निर्वाण का कारण है। अच्छा कुटुंब मिले, पैसा मिले, अच्छा शरीर मिले तो वहां अज्ञानी अभिमान करता है। ऐसी अनुकूलता प्रतिकूलता के संयोग जीव को अनंत बार मिले हैं, किंतु संयोग से पार यानी संयोग से रहित और जिस कारण से संयोग मिले ऐसे शुभाशुभ भाव से भिन्न आत्मा की पहचान नहीं की। ये क्या कहते हैं, देखिए देखो हमें तो बड़े बड़े राजाओं का भी जन्म मिला, मतलब बड़े बड़े राजा भी बने हम अनेक बार, बहुत बहुत अनुकूल हमें सहयोग मिले। मिथ्या दृष्टि कहाँ तक जाता है स्वर्ग में, मालूम है आपको स्वर्ग में मिथ्या दृष्टि कहाँ तक जाता है? हाँ आप क्या कहते हैं, नवे ग्रह तक और उसके ऊपर समय दृष्टि जाता है और सोलहवें स्वर्ग में जाएगा क्या नहीं? बोलती नहीं।
प्रश्न ऐसा पूछते हैं कि मिथ्या दृष्टि सोलवे स्वर्ग में जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ ग्रेविक तो उसके ऊपर है,
वही तो पूछ रहा हूँ मैं, लेकिन आशुर्वेन जब तक नहीं बोलती कंफर्म नहीं करते।
तो ग्रेविक के ऊपर चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि जाएगा कि नहीं जाएगा? चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि मुनि ही जाएगी, मुनि ही जाएगी। ये तो सामान्य चतुर्थ गुणस्थान वाली सम्य दृष्टि तो ग्रहदेख में भी नहीं जाएगा, मुनि नहीं ना। ग्रहदेख में जो मिथ्या दृष्टि जाता है वो मुनि होकर जाता है, द्रव्यलिंगी सच्चा जैसा।
सुनो सुनो सुनो, ये ऊपर जाने का कारण मंद कषाय है, ये कहाँ स्वर्गों में जाने का कारण वितरागता नहीं है। मुनि जाता है, मुनि जाता है सात तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है इसलिए जाता है ऐसा नहीं। उसमें जो मंद कषाय है वो मंद कषाय के परिणामों के कारण
पुण्य तीव्र है ना वहाँ मुनि के। चौथे गुणस्थान वर्ती नीचे सोलह स्वर्ग में हाँ बिना मुनि दीक्षा वो ग्रहरेख में नहीं जाएगा कोई नीचे। तो सोलवे तक भी जाता है कि नहीं पता नहीं है, मगर ये अभी पंचम काल के तो नीचे चौथे पांचवे ऐसे ही जाएंगे, ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे पंचम काल के जो भी।
अपनी क्या बात चल रही थी कि जो स्वर्गों में जीव जाता है वो उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है उसके कारण नहीं जा रहा है, उसमें जो कषायों की जो मंदता रही है। तो मुनियों के तो 28 मूलगुण पालन करने के परिणाम वो भले साचा मुनि हो या द्रव्यलिंगी मुनि हो, यानी भावलिंगी हो या द्रव्यलिंगी हो, उनके परिणाम तो उतने मंद है ना, उसके कारण वह नौवे ग्रह तक जाता है। तो अब यहाँ क्या बात हो रही है कि अनेक बार ऐसे, मतलब ये नवे ग्रह की बात क्यों निकली है कि वहाँ तो सारी अनुकूलताएं होती है, यानी कुछ कमाना धमाना नहीं, सिक्का मारने को इधर से उधर जाना नहीं, क्या ख्याल में आया? वो तो बैठे बैठे झाड़ का फल लिया ऐसा, मतलब बैठे बैठे सब मन में इच्छा आ जाए पूर्ण हो जाती है, एक्सेप्ट मोक्ष नहीं मिलता है। देखो हम पुणे में ऐसे कह रहे थे, कल्प वृक्ष होते हैं वहाँ तो जो इच्छा करे वो मिल जाता है। तो एक छोटा सा बालक था, क्या नाम था उसका?
पंढरपुर
का। बोलता वहाँ बैठे तो मोक्ष की इच्छा करे तो मिलती है,
वो चिंतामणि के सामने मोक्ष मिलता है।
देखो कैसा बच्चा भी कैसा बोलता, छोटा बच्चा था 6-8 साल का। तो खाली लौकिक बातें जो है ना, पंचेंद्रिय विषयों के भोग मिलते हैं, अन्य कुछ नहीं। तो यहाँ कहा कि अच्छा कुटुंब मिले, पैसा मिले, अच्छा शरीर मिले तो वहाँ अज्ञान या अभिमान करता है। ऐसी अनुकूलता प्रतिकूलता के संयोग जीव को एक बार मिले, अनंत बार मिले, अच्छा अनंत बार मिले हैं, किंतु संयोग से रहित क्या ऐसे आत्मा की पहचान नहीं है। और जिस कारण से संयोग मिले ऐसे शुभाशुभ भाव से भिन्न ऐसे आत्मा की पहचान नहीं है। यानी आत्मा को किससे किससे जुदा किया, ये संयोग उनसे रहित ऐसा आत्मा है। और जिस ये संयोग किस कारण मिले, तो इस जीव के प्रतिकूल संयोग मिले तो अशुभ परिणामों के कारण, और अनुकूल संयोग मिले तो शुभ परिणामों के कारण। इसलिए कहते हैं कि जिस कारण से संयोग मिले तो कौन सा कारण है, तो शुभाशुभ भाव, तो वह जो है वह शुभाशुभ भाव से भिन्न ऐसा जो आत्मा है उसकी इसे पहचान नहीं है। आचार्य कहते हैं नग्न बना चारित्र नहीं, 28 मूल गुण का पालन करना वह भी चारित्र नहीं। यानी देह की दशा जो है वह मुनि बना नहीं है, ख्याल में आया? हाँ, क्योंकि शरीर तो है नहीं ना मेरा, तो ऐसा उच्छृंखलता मत करना, शरीर नहीं ना तो फिर पहनो ना उलन का कपड़ा, नग्न क्यों रहना? हाँ, अरे ऐसे भाव ही नहीं होंगे जीव को। तो यहाँ तो क्या कह रहे हैं कि नग्नपना चारित्र नहीं है, 28 मूल गुण का पालन करना यानी ये शुभ भाव जो है बाह्य में जो शरीर है वह भी चारित्र नहीं है, शरीर की दशा जो है वह भी चारित्र नहीं है, और ये शुभ राग जो है वह भी चारित्र नहीं है, अपितु स्वभाव में स्थिर होना ही चारित्र है। मैं उस साम्य भाव को प्राप्त करता हूँ, कर्म मंद हो अथवा गुरु की कृपा हो तो साम्य भाव को प्राप्त करता हूँ, ऐसे यहाँ नहीं कहा। किंतु स्वभाव के पुरुषार्थ से साम्य भाव प्राप्त करता हूँ यह कहा है। फिर अभी गुरु करना क्या नहीं करना, सुशील क्या लिखा क्या? कोई दे नहीं सकता है अन्य कोई, साम्य परिणाम जो है वो स्वयं को करना पड़ता है, और वह भी पुरुषार्थ पूर्वक अपने स्वरूप में एकाग्रता यदि काल टिके तो उतना उसे अधिक साम्य भाव होगा, वितरकता होगी। कितना क्लियर लिखा है देखो, कर्म को मंद हो जाए, कर्म मंद हो जाए तो अथवा गुरु की कृपा हो तो मुझे साम्य भाव प्राप्त होगा, ऐसा मानना गलत है। इसलिए ऐसा यहाँ नहीं कहा, किंतु स्वभाव के पुरुषार्थ से साम्य भाव को प्राप्त करता हूँ यह कहा है। क्या कह रहे हैं आचार्य? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकाग्रता रूप रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। अब प्रतिज्ञा की बात करते हैं, मैं सम्यक दर्शन ज्ञान तथा चारित्र इन तीन की एक स्वरूप एकाग्रता करके ऐसे मोक्ष मार्ग का आश्रय करता हूँ। ये जो हमने सत्वार सूत्र में पहला सूत्र सुना पढ़ा था ना, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राणी मोक्ष मार्ग, तो यहाँ पर वही बात बताई है कि मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीन की एकाग्रता रूप ऐसा जो मोक्ष मार्ग है उसका आश्रय करता हूँ, यानी मोक्ष मार्ग का आश्रय करता हूँ, यानी किसका, मार्ग का नहीं, रस्ते का नहीं, अपने स्वरूप का, अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाएगा तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्या मैं ऐसे ही मोक्ष मार्ग का आश्रय करता हूँ, देखो यह मोक्ष मार्ग है, स्वयं आत्मा देह मन वाणी से भिन्न होकर, ये देह मन वाणी इन तीन को मिलकर एक शब्द कौन सा है चित्राबेन, बहुत बढ़िया, नो कर्म। और क्या आगे लिखा कि स्वयं का आत्मा यानी मैं स्वयं देह मनवाणी से भिन्न होकर और पुण्य पाप को छोड़कर, यानी किसको छोड़कर, भाव कर्म कर ज्ञान में लीन हो उसे मोक्ष मार्ग कहते हैं। जो महाव्रत के परिणाम आते हैं उसमें एकाग्रता नहीं, एकाग्रता नहीं है, क्योंकि उसमें तो उपयोग खंड खंड होता है। मैं सम्यक दर्शन ज्ञान सम्यक चारित्र की एक स्वरूप एकाग्रता का अवलंबन लेता हूँ, मैं करता हूँ, स्वतंत्रपने को करे वह कर्ता होता है, और जो कर्ता का इष्ट है वह कार्य है, मैं कर्ता द्वारा होने वाला जो स्वभासन्मुख समता रूप कार्य है वह मेरा कर्म है, किंतु जो पुण्य पाप परिणाम है वह मेरा कार्य नहीं है, क्योंकि वो विभाव भाव है ना, और मैं देह का कार्य भी नहीं करता, जगत का कार्य तो जगत से होता है, कमजोरी से होने वाले पुण्य के परिणाम भी स्वभाव दृष्टि में ज्ञाता का ध्येय है, वो मेरे ज्ञान का ध्येय है, ज्ञाता यानी जानने वाला, ऐसा जो मैं हूँ वह मेरे ज्ञान का ये है। मैं पुण्य को छोड़कर स्वभाव में एकाग्र होता हूँ, मैं निज परमार्थ का अवलंबन लेता हूँ, यह प्रतिज्ञा का अर्थ है। उन्होंने यहाँ प्रतिज्ञा की ना कि अभी मैं ऐसा आत्मा में लीन हो जाऊंगा, यहाँ शास्त्र लिखने की प्रतिज्ञा नहीं कही, क्या कहा, कौन सी प्रतिज्ञा की है कि यहाँ शास्त्र लिखने की प्रतिज्ञा नहीं कही, अपितु स्वभाव में वितरासा हुई वह प्रतिज्ञा है। इस प्रकार श्रीमद भगवत कुंदकुंदाचार्य ने साक्षात मोक्ष मार्ग का अंगीकार किया है, सम्यक दर्शन ज्ञान हो वहां तक साक्षात मोक्ष मार्ग नहीं है, अपितु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इस प्रकार तीन की एकता ही मोक्ष मार्ग है। अज्ञानी जीव पुण्य पाप के परिणाम करके अर्थात बंध का उपाय करके उसे छूटने का उपाय मानते हैं। मैं कौन हूँ, पृथक पदार्थ क्या है और विकार क्या है, उनके यथार्थ ज्ञान के बिना छूटने का उपाय नहीं होता। क्या कहा, देखो यहाँ ऐसा कहते हैं कि आप तो स्व को भी जानो और पर को भी जानो, क्यों साहब, अरे हमको तो अपने में लीन होना है ना, तो पर को जानने की क्या आवश्यकता है, वो इसलिए जानना कि स्व को स्व रूप से जानना और पर को पर रूप है ऐसा जानना, तो हम तो इतने होशियार हैं कि स्व भी मैं हूँ और पर भी मेरा है, मैं हूँ ऐसा, यानी मैं तो जीव हूँ और ये शरीर मेरा है, तो कहते शरीर को जानो किसलिए, कि उस रूप में नहीं हूँ ऐसा जानने के लिए उसको जानो। तुम त्याग भी तो किसका करोगे कि जो अपना मतलब स्वरूप नहीं है तो उसमें नहीं जाना, उसमें नहीं एकाग्र होना, वही तो उसका त्याग है। जिस लोग क्या कहते, देखो उनके यथार्थ ज्ञान के बिना छूटने का उपाय नहीं होता, छूटने का यानी उसके साथ ही वह जुड़ा हुआ है ना, तो जुड़ा हुआ जो है उससे छूटने का उपाय नहीं होता। अवसर हो गए कुछ पूछना है तो जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकानो हो वाणी मस्त सुनो सदा देखो।
जिनवानी माता की इच्छा।